इनायत के ऐसे तोते की तरह बोलने पर रियाज की आंखें छोटी हो जाती है, पर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। आईना चाची कहती है, इनायत, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। रियाज बस इतना कह रहा है कि इसकी इजाज़त के बिना घर के बाहर मत जाना। इनायत जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। रियाज एक नज़र इनायत को देखता है और फिर कहता है, इनायत, अमल, जन्नत और मुराद, स्टडी रूम में आकर मुझसे मिलो, तुम सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इनायत की हालत तो पहले ही खराब हो रखी थी और बाकी सबकी आंखें एकदम से बाहर आने को हो गई थीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब रियाज का खौफ उनके ऊपर बरसेगा। डिनर करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। बस एक इनायत बाकी सबके साथ हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी और उसकी नज़रें बारी बारी स्टडी रूम की तरफ जा रही थीं, जहाँ से किसी भी वक्त रियाज का बुलावा आ सकता था। मुराद यहाँ से वहाँ चक्कर काटता है और उन लोगों को देखते हुए कहता है, मैं तो बेफालतू में तुम लोगों के चक्कर में फंस गया। अच्छा भला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर जा रहा था, चला ही जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। न मैं तुम्हें देखता और न तुम्हारे पास आता और न ही इन सब में फंसता। पता नहीं अब भाई मेरे साथ क्या करेंगे। मुराद भाई, आप कितने बड़े फट्टू हैं, ये आपकी शक्ल को देखकर पता चल रहा है। अरे बहादुर मर्द बनिए और जाकर भाई के साथ फेस टू फेस बात कीजिए, अमल ने मुराद को हिम्मत देते हुए कहा। हालांकि उसकी खुद की हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि जब तक उस तक बात आए तब तक किसी और को लपेटे में ले लिया जाए। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं भाई के साथ जाकर फेस टू फेस बातें करूं और उनसे ये कहूं कि भाई मेरे इन सब में कोई गलती नहीं है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन फिर भी लड़कियां अपनी मर्जी से बाहर चली गईं और मैं कुछ नहीं कर सका। तुम ये चाहती हो अमल कि मैं भाई को जाकर ये कहूं और अगले ही पल भाई मेरी हड्डियों का चूरमा बना दे। मुराद ने लगभग गुस्से में अमल से ये कहा तो अमल चुप बैठ गई। जन्नत चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहस करना बंद कर सकते हो? देखो, थोड़ी ही देर में भाई की स्टडी रूम में जाना होगा हम सबको और उसके बाद हम सभी एक दूसरे का सहारा है, इसीलिए ये बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय क्या करना है इसके बारे में सोचो। कैसे सोचे जन्नत, सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए और इस समय किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कोई आइडिया, ना कोई बहाना, ना कोई तरकीब, कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ब्लॉक हो रखा है, अमल ने नौटंकी भरे अंदाज से कहा। उन सभी परेशान देखकर इनायत और ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे पर सच में किसी के पास कोई आइडिया नहीं था इस मुसीबत से बाहर निकलने का। जन्नत ने अमल के माथे पर मारते हुए कहा, तू कितनी बड़ी डरपोक है, चुपचाप बैठ जा और ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत कर। डरे हुए हम सभी हैं, पर हम तेरी तरह और मुराद भाई की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझदारी से काम ले रहे हैं। अमल ने अपने माथे को सहलाते हुए जन्नत को देखा और अपनी आँखें छोटी करते हुए उससे कहने लगी, तू और समझदार, मेरा मुँह मत खुलवा। भूल गई वो दिन जब हमारे साथ कॉलेज से वापस आते हुए वो किडनैपिंग वाला हादसा हो रहा था? उसके बाद तू यहाँ से भाग जाना चाहती थी, हवेली का कोना कोना छान मारा था ताकि इस कैद से बाहर भाग सके। पागल लड़की, क्या बोल दिया, ये हम दोनों का सीक्रेट था, जन्नत ने अपनी आंखें दिखाते हुए अमल से कहा। तो अमल अपनी जीभ को अपनी दांतों तले दबाते हुए कहती है, सॉरी, भूल गई, टेंशन के मारे मेरी जबान फिसल गई। अच्छा, अगर मेरी जबान फिसल जाएगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बताओ अभी सबको कि तेरा क्या सीन चल रहा है पासवर्ड वाले। इससे पहले कि जन्नत अपनी बात पूरी कर पाती, अमल ने उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी आंखों से उसे खा जाने का इशारा किया। मुराद उन दोनों की बातें तो सुन रहा था, लेकिन उन दोनों की बातों से वो कुछ समझ नहीं रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये किस बारे में बातें कर रही हो तुम दोनों? तुम्हें पता भी है ना यहाँ पर इतनी बड़ी टेंशन है और तुम दोनों यहाँ पर हंसी मजाक कर रही हो, और ये क्या पासवर्ड बोल रही थी? अमल ने बात घुमाते हुए कहा, वो भाई, हम तो ये कह रहे थे कि क्या आपको पासवर्ड पता है इस हवेली के सारे दरवाजों का? पासवर्ड, हम बस इस बारे में बात कर रहे थे और कोई बात नहीं है। वो तीनों आपस में इधर उधर की बातें करके अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनायत की नज़रें सिर्फ और सिर्फ स्टडी रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त बंद था, और उसे डर था कि जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर से उन लोगों का मौत का फरमान सुनाया जाएगा। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है। उन चारों की नज़रें एक साथ स्टडी रूम की तरफ जाती हैं। वहाँ से एक सर्वेंट बाहर निकलता है और सोफे के पास आते हुए कहता है, मालिक, आप सबको अंदर बुला रहे हैं। वो चारों डरती हुई निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो चारों स्टडी रूम के पास पहुंचते हैं। इनायत सबसे अलग खड़ी थी, उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे अंदर जाने के लिए, और बाकी तीनों का तो पूछो ही मत। अगर मुराद आगे जाता तो जन्नत जल्दी से उसके पीछे हो जाती और अमल को आगे कर देती है। तीनों एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे तक ला रहे थे। स्टडी रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मुराद ने अमल को आगे धकेलते हुए कहा, तुम पहले जाओ। अमल दो कदम आगे गई और दरवाजे के चौखट पर पहुंच भी गई थी, पर वो जल्दी से पीछे भाग कर आती है और जन्नत के पीछे खड़े होते हुए खुद को छुपाने की कोशिश करती है। वो गुस्से में मुराद को देखते हुए कहती है, मैं क्यों जाऊं बलि का बकरा बनने के लिए, तुम जाओ पहले, तुम तो लड़के हो ना, तुम्हें बहादुर होना चाहिए। मुराद ने अमल को घूरते हुए देखकर कहा, अच्छा अभी मुझे लड़का होने का हवाला दे रही हो, तब कहाँ थी ये बात जहाँ पर हर जगह पर तुम लेडीज फर्स्ट के नारे लगाया करती थी? अमल जल्दी से कहती है, वो जो कुछ भी है मैं नहीं जाने वाली हूँ, जन्नत तुम जाओ पहले।